بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام راہ زندگی میں شرعی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، احکام اسلامی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہماری ایک سلسلے وار گفتگو تھی۔ ہم نے تقلید سے یہ گفتگو شروع کی تھی، ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مختصر سے وقت میں واضح کیا۔ پھر تقلید کے بعد ہم نے طہارت کے حوالے سے گفتگو کی، اور الحمدللہ یہ بھی ایک ہمارا ایک طویل سلسلہ تھا لیکن اپنی یعنی منزل تکمیل تک پہنچا۔ اور آج سے ہم جو اس پروگرام میں گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اس میں بہت بڑا کردار خدا آپ کا رہا ہے کہ آپ نے ہم سے سوالات کیے اتنے اچھے اچھے، اور اس طریقے سے جو آپ کے سوالات آئے ہیں پروگرام کو اور بہتر بنانے میں ہماری مدد ہوئی ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا تک جو یہ اسلامی معارف پہنچے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ حسب معمول آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، چونکہ پروگرام میں ابتدائی طور پر وہ سلسلہ وار گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد خود آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے مہمانوں کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہم نماز کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔
جی، میں خدا بند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس بندہ حقیر کو بیان احکام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ لوگوں کے لیے بیان احکام کے زمینے کو فراہم کیا، اور اسی طریقے سے تمام ناظرین کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کو بہت ہی غور و خوض کے ساتھ سنتے ہیں،
جی،
اور اپنے سوالوں کے ذریعے اس بات کا سبب بنتے ہیں، جی، کہ احکام خدا دوسرے افراد تک پہنچ سکے۔
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی ہم شکر گزار ہیں ناظرین کے۔ حضور، نماز کے سلسلے سے ہم گفتگو شروع کریں گے، تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ اہمیت کے حوالے سے آپ بیان کیجئے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ نماز کتنے طریقے سے شریعت اسلام میں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اور انجام دی جاتی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نماز کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر نماز کا تذکرہ آیا ہے،
بے شک،
اور روایات میں 1000 سے زیادہ روایتیں اہمیت، فضیلت اور وقت نماز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔
جی،
اس کا وقت بہرحال اس فقہی دنیا میں نہیں ہے،
جی،
لیکن فقہی کتابوں میں جو اجمالی طور پر اہمیت نماز کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، سید یزدی اس طریقے سے مخاطب ہیں تمام مکلفین سے،
صحیح،
کہ اعلم ان الصلاۃ احب الاعمال الی اللہ تعالی۔ اعلم یعنی تم سب پر اس بات کا جاننا واجب ہے،
جی،
کہ نماز ایک ایسا فریضہ الہی ہے،
جی،
جو اللہ کی نگاہ میں تمام فریضوں سے زیادہ محبوب ہے۔
صحیح۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کی وصیت ہے،
بے شک،
چنانچہ جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا،
جی،
وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
جی،
اللہ نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وصیت فرمائی ہے،
جی،
جب تک میں زندہ ہوں۔
صحیح۔
اور نماز ہی ایک ایسا فریضہ الہی ہے جس کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین،
بے شک،
نماز دین کا ستون ہے،
جی،
جس طریقے سے عمارت سے ستون کو اگر ہٹا لیا جائے،
جی،
تو عمارت گر جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی،
جی،
اسی طریقے سے اگر انسان مسلمان ہے،
جی،
اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے،
صحیح،
تو اس کے سارے اعمال زمین بوس ہو جائیں گے۔
بالکل صحیح فرمایا۔
اور یہ روایت کا بھی جملہ ہو سکتا ہے، اور عام طریقے سے فقہی کتابوں میں،
جی،
یہ جملہ موجود ہے اور علماء کی زبان پہ رہتا ہے،
جی،
کہ نماز ایک ایسا فریضہ الہی ہے، ان قبلہ ما سواہا،
بے شک،
ان قبلت قبلہ ما سواہا،
جی،
اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّا مَا سِوَاهَا, اگر یہ رد کر دی جائے یا انسان نہ پڑھے تو اس کے سارے اعمال اکارت اور بیکار ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے ایک چیز اور میں عرض کروں, روایات میں اور بہت سی روایات میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ بندوں سے سوال کرے گا وہ نماز ہے.
بے شک, وہ ایک شعر بھی ہے نا مشہور, روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود.
نماز بود. دیکھیں یہاں دھوکہ نہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد دو جگہوں پر ہم سے سوالات ہوں گے, ایک قبر میں ہے اور ایک روز قیامت میں. وہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلا سوال ولایت امیر المومنین اور ائمہ اطہار کے بارے میں ہے.
جی,
لیکن محشر کا جو سب سے پہلا سوال ہے
جی بالکل
وہ نماز کے بارے میں ہے.
جی حضور, کس طریقے سے, کتنے طریقوں سے نماز شریعت میں ہے, اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالی چکے پروگرام کا دوسرا حصہ بھی نزدیک.
دیکھیے ایک چیز میں عرض کروں, نماز کے طریقے اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں.
جی,
مختصر طور پہ میں یہ عرض کروں
جی
کہ نماز میں خضوع اور خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے.
بالکل,
یعنی انسان جو ہے خالص دل سے خدا کی بارگاہ میں آئے, واجبات کو مد نظر رکھے. نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں, نماز کتنی چیزوں سے باطل ہوتی ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے.
جی,
نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں, کتنی چیزیں مستحب ہیں.
صحیح,
اگر ان واجبات و محرمات و مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے
جی
نماز پڑھی جائے تو یہ بندے کی نماز جو ہے وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں حدیث پیغمبر ہے, الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بعض برادران, بہرحال وقت کی کمی ہے لہذا چند جملوں میں میں اس بات کو کہوں گا کہ ایک صاحب نے کہا قبلہ ہم بہت پریشان ہیں, ہمارے کلمہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے, مسلمان ہونے سے کیا فائدہ, اللہ جو ہے ہماری باتوں کو نہیں سن رہا ہے. تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میاں اللہ تعالیٰ کو جو ہے فون کر کے پتہ لگا لو کہ ہمارے یہاں کیا کمی ہے.
صحیح,
وہ انسان گھبرا کے کہتا ہے قبلہ اللہ تعالیٰ کا فون نمبر بھی ہے. کہا ہاں, نوٹ کرو. کہا کیا نمبر ہے؟ کہا لکھو 2-4-4-3-4. اس نے دماغ کو زور دیا.
صحیح,
کہا قبلہ یہ نمبر کیا ہے اور کہاں سے آپ لائے؟ کہا سنو, صبح کی 2 رکعت,
اللہ
ظہر اور عصر کی 4-4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. اگر تم اس فون نمبر کو ڈائل کرو گے اور نماز پڑھتے رہو,
اگر خدا سے رابطہ برقرار کرو گے
تو خدا تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا.
بالکل صحیح فرمایا. تو کتنے طریقے سے ہے نماز, یعنی اس میں واجب مستحب اور یہ کیا, اس کے حوالے سے کچھ آپ بیان کریں گے؟
دیکھیے نماز جو ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے.
صحیح,
واجب نمازیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے اگلے جلسے میں یا پھر کبھی موقع ملا یا ابھی اگر وقت وسیع ہو تو میں اس کی تفصیل بیان کروں گا.
صحیح,
کہ واجب نمازیں 6 ہیں شریعت اسلام میں.
جی,
اور واجب نمازوں میں کتنی چیزیں واجب ہیں,
صحیح,
اس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جو ہے
جی
اپنے ناظرین اکرام کے لیے ہم جاری رکھیں گے
جی
اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے.
صحیح,
لیکن سب ملا کے نماز کے اندر واجبات و محرمات کو انسان مد نظر رکھے.
جی,
چونکہ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی.
صحیح,
اور یہ بلکہ آپ کا عمل ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرماتے
جی
اتنے میں دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے نماز شروع کی اور اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور سجدوں کو خاص طور سے
جی
اتنی تیزی کے ساتھ اس نے انجام دیا
جی,
جس طریقے سے کوا اپنی منقار جو ہے
جی
غذا پہ رکھے اور اٹھا لے
وہ دانا چگنے کے لیے,
دانا چگنے کے لیے.
بالکل,
تو حضور پاک نے کہا اگر یہ آدمی اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا
جی
اور مر گیا تو یہ ہمارے دین کے علاوہ دوسرے دین پر مرے گا.
اللہ اکبر.
تو صرف نماز پڑھنا اہم نہیں ہے.
جی بالکل, اس کے تمام آداب اور تمام شرائط ان کی رعایت کی جائے,
ان کی رعایت کرنا جو ہے بہت جی اہم چیز ہے.
حضور بہت شکریہ, اجازت دیجئے آج کا یہ سلسلہ ہم یہیں پر روکیں گے چونکہ سوالات کافی ہیں جو ناظرین کی طرف سے آئے ہیں. ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, اب سلسلہ شروع ہوگا آپ کے سوالات کا جو آپ نے ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سے بھیجے ہیں. اور اگر آج بھی کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز ہی سے مربوط ہو, किसी भी यानी फिकही चैप्टर से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसमें यह भी बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ताकि सवाल को आप ही की आवाज़ में नशर किया जा सके। तो आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम राह ज़िंदगी में वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है, हमारे साथ रहिए, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, सवालात का एक सिलसिला है, देखिए हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जनाब मुश्ताक हुसैन साहब करगिल से एक सवाल कर रहे हैं और नमाज ही के हवाले से उनका सवाल है और हमारी गुफ्तगू भी नमाज के हवाले से चल रही थी। वो पूछ रहे हैं कि क्या कज़ा नमाज पढ़ने के लिए अजान व अकामत दोनों पढ़ना वाजिब है या वाजिब नहीं है, इसके ऊपर रोशनी डालिए।
देखिए, इस सिलसिले में हुक्म फ़िक़ी ये है
जी
कि नमाज के लिए अजान और इकामत का होना
जी
ये मुस्तहब है,
सही,
वाजिब नहीं है, लेकिन इकामत नमाज के बनिस्बत ज़्यादा मुस्तहब है,
जी उसमें ताकीद पाई
उसमें
जाती है,
जी ताकीद की गई है।
सही
अगर इंसान जो है अजान नहीं दे सकता है
जी
तो कम से कम जो है इकामत कह के तब नमाज की नियत बांधे।
सही
तो अजान और इकामत नमाज के लिए वाजिब नहीं बल्कि एक फेल मुस्तहब है
यानी अदा में भी वाजिब नहीं है,
जी, ना
जब अदा में वाजिब नहीं है तो
कज़ा
कज़ा में
में
बदर्जे
औला वाजिब
जी
नहीं।
बिल्कुल। हुजूर, सवाल किया है शफकत मोहम्मद साहब ने श्रीनगर कश्मीर से, पूछ रहे हैं कि गुस्ल जनाबत के बाद वुजू करने या न करने का क्या हुक्म है, जबकि हमारे पास अभी वक्त भी है कि हम वुजू कर सकते हैं, यानी वक्त वसी है नमाज का, तो क्या हुक्म है, क्या गुस्ल जनाबत के बाद वुजू करना है या नहीं करना।
देखिए, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं
जी
कि चूंकि सवाल मुतलक है बेदून क़ैद
सही
कि गुस्ल जनाबत के बाद
जी
अगर आपकी ये तहारत गुस्ल वाली
जी
बातिल हो गई है,
सही
मसलन वो चीज़ सादिर हो गई आपसे
जी
जिससे वुजू टूट जाता है,
जी
तो आपके लिए वाजिब है दूसरी नमाज के लिए वुजू कीजिए।
सही,
सही,
लेकिन
ये
सवाल
एक
से
मसला है
जी वाजह तो यही हो रहा है कि अभी कोई ऐसी चीज सादिर नहीं हुई है,
जी।
जैसे ही उन्होंने गुस्ल किया उसके बाद फौरन वो मसलन नमाज अदा करना
हाँ,
चाहते हैं।
अब दूसरी चीज़ इसकी वो है जो आपने फरमाई
जी
कि अगर इंसान गुस्ल जनाबत करे और वक्त भी वसी है
जी
और कोई ऐसी चीज़ उससे सादिर नहीं हुई है
जी
जिसकी वजह से तहारत बातिल हो जाए,
सही
तो उसके लिए जो है वुजू और तयम्मुम नहीं है।
सही
और अगर वो गुस्ल जनाबत के साथ मसला जानते हुए आमदन वुजू करे और वुजू करके नमाज पढ़े तो गोया उसने जो है दीन में बिदात गुजारी की है,
जी
चूंकि गुस्ल जनाबत के बाद वजू मशरू नहीं है,
जी
यानी वजू कानूनी नहीं है,
जायज नहीं है,
जायज़ नहीं है।
सही
लेकिन अगर उसने इस नियत से किया कि गुस्ल जनाबत के बाद जो है
जी
वजू करना ज़रूरी है या हम करके पढ़ेंगे, अलबत्त
सही
उसकी नमाज सही है
सही
चूंकि गुस्ल सही था, लेकिन उसे बिदात का गुनाह मिलेगा।
जी
बिदात यानी जो चीज़ शरीयत का हुक्म नहीं है
जी
उस चीज़ को शरीयत का हुक्म बनाना
सही
और उसको तस्लीम करना।
जी
लिहाजा तमाम अगसाल के लिए वुजू ज़रूरी है
जी
सिवाय गुस्ले जनाबत।
जी
अगर इंसान ने गुस्ले जनाबत किया है तो
सही
ये गुस्ले जनाबत काफ़ी है उसके लिए कि
जी
इंसान गुस्ले के साथ नमाज और वो चीज़ें
जी
जिसमें तहारत शर्त है बगैर वजू के उनको अंजाम दे।
यानी हुजूर जो आपने अभी फरमाया ये थोड़ा सा सख्त हो गया हमारे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी, यानी गुस्ले जनाबत के बाद उसको वजू नहीं करनी है
जी, वजू नहीं करना है।
जी, और अगर करता है तो फिर वो गुनाहगार है
हाँ, यही कहने का मकसद है,
जी,
चूंकि शरीयत ने
मना किया है कि तुम
मना
वजू
किया
मत करो,
है,
तो इसलिए अगर वो वजू करता है गुस्ल जनाबत के बाद तो फिर वो गुनाहगार है।
गुनहकार है,
जी
यानी
बिल्कुल
गोया उसने बिदात ईजाद की है।
जी जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो यहां पर जो रिकॉर्डेड सवालात हैं उनमें से हम एक सवाल देखते हैं, उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिस्मिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं कश्मीर से मुदस्सिर आगा बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं हम सब, सैयद मोहसिन और सैयद मोहम्मद भी। तो हमारा सवाल यह है कि एक सैयद पे सदका हराम है हमारे शिया मसलक में, और सवाल यह है कि कौन सा सदका और किस नवियत का सदका, इसके लिए हमें वजाहत चाहिए। कि सदका कौन सा हराम है।
ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर आगा साहब का सवाल है कि जो कहा जाता है कि सैयद के ऊपर सदका हराम है, तो इसकी वजाहत कीजिए कि कौन सा सदका है जो सैयद के ऊपर हराम है।
देखिए, जो सदका जो है सादात पे हराम है
जी,
उस सदक़े से मुराद जो है ज़कात है।
सही,
चाहे वो ज़कात अमवाल हो, माल की ज़कात हो,
जी
चाहे वो ज़कात फितरा हो,
जी
ये दोनों ज़कातें वो हैं जो सैयद गैर सैयद से नहीं ले सकता है।
सही
लेकिन सैयद गैर सैयद से अगर उसकी गैर सैयद की ज़कात है
जी,
तो ले सकता है, कोई हरज नहीं
सैयद
है।
ले सकता है गैर सैयद से,
सैयद सैयद से ले सकता
जी,
है,
गैर सैयद से नहीं ले सकता,
सैयद गैर सैयद से ज़कात नहीं ले सकता, मगर यह कि मजबूर हो जाए
सही
और उसके लिए बाइस से हरज हो जिंदगी का बसर करना,
जी
तो इस सूरत में फुकाए कराम ने इजाजत दी है
जी
कि बकदर ज़रूरत जो है ज़कात ले सकता है
जी। हुजूर सदक़े के हवाले से इसमें एक सवाल आया है, उसके बाद हम दोबारा रिकॉर्डेड सवालात की तरफ आएंगे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे घर वालों ने हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ से सदका निकाला है, तो क्या वो हम सदका किसी सैयद को दे सकते हैं?
दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है
जी,
अगरचे निकालने वाले गैर सैयद भी हों,
वो भी दे सकते हैं,
वो भी, चूंकि असल में सदका किसका निकालना है
जी, बिल्कुल
सदका एक सैयद का निकाला जा रहा है
जी,
तो ये मसलन इमाम ज़माना का सदका जो निकाला जा रहा है
जी,
ये सैयद का सदका जो है सैयद को भी दे सकते हैं
और गैर सैयद को,
अलबत्ते ये मुस्तहब भी सदका है।
लेकिन अगर कोई अपने बच्चे का सदका निकाल रहा है, चूंकि ज़कात अगर फितरा नहीं है जैसे आपने
फरमाया, तब भी दे सकता है,
दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं,
अलबत्ता
ये नहीं कि सैयद का निकाला जा रहा है,
अलबत्ता गैर सैयद का इस किस्म का सदका जो है
जी,
ये अगर कराहत शरई नहीं रखता
जी,
तो कराहत उर्फी रखता है, इन उर्फ आम में जो है
जी,
ये पसंद नहीं करते लोग कि गैर सैयद का सदका जो है सैयद का है।
लेकिन वो मुराद जो है कि हराम है वो फितरा और
फितरा और ज़कात फितरा है और ज़कात अमवाल है।
सही, बिल्कुल।
लेकिन यहाँ जो है अगर गैर सैयद भी सदका निकाल रहा है, चाहे वाजिब की नियत से निकाले, मन्नती सदका है
जी,
नजर का सदका है, अगर ये काम मेरा हो गया तो मैं इमाम ज़माना की तरफ से 100 रुपए सदका दूंगा,
सही,
ये सदका वाजिबा हो गया
जी,
वलो निकालने वाला गैर सैयद है
जी,
लेकिन ये सदका जिसका निकाला गया वो सैयद है,
सही,
लिहाजा सैयद का सदका सैयद को दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है।
खैर, बहुत शुक्रिया हुजूर, इजाजत दीजिए और जो रिकॉर्डेड सवाल आते हैं उनको देखते हैं।
सलाम अलैकुम, मेरा सवाल ये है कि क्या मर्द अंडर शर्ट में नमाज पढ़ सकता है?
जी, सवाल ये है कि क्या मर्द जो बनियान वगैरह होते हैं उसमें नमाज पढ़ सकता है या नहीं?
पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं। मर्दों के लिए नमाज में
जी
सिर्फ शर्मगाह का छिपाना वाजिब है।
सही
सही
जी।
लेकिन औरतों के लिए नमाज में पूरे जिस्म का छिपाना वाजिब है।
सही,
सिवाय इतने चेहरे के
जी,
थोड़ी तक जो है
जी जी,
इतने चेहरे के, हाथ के और पैर के, पैर वो भी टखने तक औरत खोल सकती है
जी,
अलबत्ता उस टखने तक पैर को नामहरम के सामने नहीं खोल सकती।
सही,
ये बारीकी है इसकी
जी।
नमाज में औरतें जो हैं
जी
अपने सजदे की जगह
सही
सिवाय घुटने के,
सही
पेशानी है, दोनों हाथ है कलाई तक,
सही
और ये पैर का हिस्सा टखने तक
जी
औरत जो है नमाज में खोल सकती है
जी,
और उसका पूरा जिस्म इसके अलावा छिपा हुआ होना चाहिए।
सही,
लेकिन मर्दों के लिए अगर एक अंडरवियर पहन के भी इंसान नमाज पढ़ रहा है, एक बनियान पहन के भी नमाज पढ़ रहा है, तो कोई हरज नहीं है। मगर ये के
सही जी,
मसलन आदमी चड्डी पहन के जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने चला है
जी,
अलबत्ता नमाज उसकी बातिल नहीं है
जी,
लेकिन सब मिला के इस लिहाज से वो गुनहगार हो सकता है, क्योंकि बास फुखा की नजर के मुताबिक नामहरम औरतों के सामने जिस्म आप नहीं खोल सकते।
सही
सही, इस अनुमान से हो सकता है उसे गुनाह पड़े, लेकिन खुद उसकी नमाज पर कोई हर्फ नहीं आएगा।
सही, बिल्कुल। हुजूर, एक सवाल किया गया है कि अगर बालों में तेल लगा हुआ है तो क्या उस पर मसा सही है?
देखिए, बालों में कितना तेल लगा हुआ है
जी,
ये तेल की मिकदार के ऊपर है।
सही,
कभी ऐसा होता है कि बालों में इस कदर तेल लगा हुआ है कि जब हम मसह के लिए हाथ सर पे रखते हैं तो हाथ फिसल जाता है, और तेल इतना ज़्यादा है कि पानी उसकी वजह से बालों की जड़ों तक, या बाल अगर छोटे हैं तो बालों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
सही,
तो इस सूरत में मस नहीं होगा
जी।
लेकिन अगर इंसान ने मसलन रात में तेल लगाया,
सही,
सुबह तक तेल खुश्क हो गया, उसकी फकत नमी बाकी है
जी,
अगर इंसान को शक है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा,
सही,
तो इस सूरत में बेहतर यह है कि एक कपड़ा ले, कपड़े से मसे की जगह थोड़ी सी जो है खुश कर ले,
सही,
धुलना जरूरी नहीं, हल्का सा खुश कर ले,
जी
इतना खुश्क हो जाए कि आदमी जब मस करे तो मस का पानी जो है बालों की जड़ तक पहुंच जाए,
जी
कोई हर्ज नहीं है।
सही
अलबत्त
बिल्कुल
हमारे माशरे में चूंकि इस मसले को इस तरीके से पेश किया गया है कि लोग तेल लगाने से भाग रहे हैं,
जी
आपने तेल क्यों नहीं लगाया?
सही
कहा साहब ऐसा है कि मस नहीं होता, ऐसा नहीं है,
जी
शरीयत में बतौर इस्तेहबाब तेल लगाने की बहुत ताकीद की गई है,
जी
हत्ता आइम्मे मासूमीन की सुन्नत सीरत ये रही कि
जी
आप लोग जो है सरों में तेल जरूर लगाते थे, लिहाजा
जी
तेल जरूर लगाइए,
सही
लेकिन मस में
जी
जब आप करने जाए, मस का वक्त हो जाए और
सही
वजू में मस कर रहे हों
जी
और ज्यादा तेल लगा हुआ है
सही
तो एक उंगली के बराबर फकत
जी
आप जो है किसी कपड़े से उसे खुश कर लीजिए या टिश्यू उठाइए, टिश्यू
जी
से खुश कर लीजिए, उसके बाद मस कीजिए, कोई
सही
हर्ज नहीं है।
नहीं बिल्कुल। तो हुजूर इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल किया गया है कि जिस गाय का बच्चा उसकी शिकम में मर गया हो तो क्या उस गाय का पहला दूध पाक है, और क्या उस दूध से पनीर बनाकर या मसलन दूसरी चीजें जो दूध से बनती हैं वो बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं?
देखिए गाय के बच्चे के मरने से
जी
और दूध से कोई रब्त नहीं है,
शिकम में मरने से
जी कोई रब्त नहीं है,
सही
चाहे ये कि ये बच्चा इस बात का सबब बना
जी
कि गाय ने जो है दूध दिया
जी
और उसकी थनों में दूध आया,
सही
लेकिन इसके बावजूद जो है कि बच्चे के मर जाने की वजह से गाय का दूध न नजिस होगा
जी
न उस पर हुरमत का फतवा लगाया जाएगा,
सही
ये दूध पाक है,
जी
आप इसका पनीर भी बना सकते हैं, आप इसे जो है खा भी सकते हैं, पी भी
सही
सकते हैं,
जी
लेकिन ये कि अगर ये दूध जो है खून की शक्ल में है या खूनी है तो
जी
इस सूरत में परहेज किया जाए, ये
सही
दूसरे उनवान से नजिस होगा।
जी बहुत शुक्रिया हुजूर। एक सवाल किया गया हुजूर कि बाज़ ममालिक में सूरज और चांद, मसलन सूरज जो है वो चंद दिनों तक के लिए गुरूब हो जाता है, चंद दिनों तक वो गुरूब रहता है यानी वहाँ पे निकलता नहीं है, तो चंद दिनों तक मसलन नहीं निकलता, तो ऐसी जगह पर नमाज और रोज़ा किस तरीके से अदा किया जाएगा?
देखिए बाज़ जगह इसी दुनिया में ऐसी हैं
जी
जहाँ मसलन
या तो गुरूब हो जाता है निकलता ही नहीं है, या
हाँ
निकलता है तो गुरूब नहीं होता
गुरूब
है।
में मसलन एक महीना दिन है और एक महीना रात है,
जी
तो इस सिलसिले में आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी तामत
जी
बरकात तो वो ये फरमाते हैं कि
जी
अगर इंसान ऐसी जगह पे है
जी
जहाँ जो है दिन होता है तो रात नहीं होती
जी
और रात आ जाती है तो दिन नहीं होता,
सही
नमाज पढ़ने के लिए
जी
वो उस जगह से करीब तरीन जो शहर है
सही
वो उसको मिलाक करार देगा,
जी
मसलन वहां से 500 किलोमीटर दूर पे एक शहर है,
जी
वो पता लगाया क्या वो लोग मगरिब की नमाज किस वक्त पढ़ते हैं,
सही
जोहर की किस वक्त पढ़ते हैं,
जी
असरों और ऐशा की किस वक्त पढ़ते
उसके
हैं,
मुताबिक वो अमल करें
उसी वक्त वलो ये कि
जी
रात नहीं आ रही है दिन
सही
ही में
जी
सारी नमाजों को पढ़ेगा,
जी
लेकिन न कज़ा की नियत कर सकता है और
जी
न अदा की नियत कर सकता है,
अल्लाहु अकबर
कुर्बते मुतलका की नियत से पढ़ेगा,
सही
मसलन
जी
दिल में ये रहे 3 रकात नमाज मगरिब की पढ़ता हूँ
जी
कुर्बतन इलल्ला,
सही
यानी अदा ना नहीं
जी
मालूम,
अदा और कज़ा
कज़ा नहीं
जी
मालूम,
सही
इसीलिए आयतुल्लाह सिस्तानी ने कैद लगाई कुर्बते मुतलका,
जी
नमाज को कुर्बते मुतलका के
जी
कुर्बते मुतलका की नियत से अंजाम दें।
सही
अलबत्त रोजे में
जी
चूंकि रोजे के लिए आयत सरीह तौर पे कह रही है
जी
कि अतिमु सयाम इलल्लैल,
सही
रोजे को जो है
जी
रात तक तमाम कर दो,
जी
या बाज़ आयतों में इशारा किया गया है कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वदे
सही
मिनल फजर,
जी
यानी रात में कब तक खाओ जब तक कि सुबह सादिक नमुदार ना हो जाए,
जी
तो रोजा एक महदूद इबादत है सुबह
सही
सादिक से लेकर गुरूब कामिले आफ्ताब तक,
जी
लिहाजा इस शहर में जहां ये आदमी रह रहा है
जी
ना सुबह हो रही है और
सही
ना रात हो
रात
रही
हो रही
है,
है बेशक
लिहाजा फरमाते हैं कि इसके ऊपर रोजा साकित है
जी
और अगर वो माह रमजान में सफर कर सकता है तो वाजिब है उसके ऊपर
सही
ऐसी जगह चला जाए
जी
जहां दिन और रात होती है
सही
ताकि ये दिन में रोजा रखे और रात में इफ्तार करे,
सही
अगर सफर नहीं कर सकता है
जी
तो माह रमजान के बाद
जी
इन रोजों की कजा के लिए ऐसे शहर में एक महीना रहे
जी
जहां दिन और रात हो होती है। और अगर इस शहर में मान लो ये कैद है,
जी
कैदी की हैसियत से है,
जी
तो एक साल से
जी
दूसरे साल तक अगर वक्त गुजर गया है और इसको कैद से नहीं निकाला गया है,
सही
तो इस आदमी को ऊपर रोजा साकित है, क्योंकि कजा का वक्त भी इसको नहीं मिला।
जी
हर रोज के बदले में 3 पाव गंदुम या जौ फकीर को देगा।
जी बिल्कुल हुजूर, बहुत शुक्रिया। अभी जो हमारे पास इस वक्त सवाल आ रहे हैं उनमें से एक सवाल अभी श्रीनगर से पूछा गया है, अगर इजाजत दें तो वो सवाल लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि हम श्रीनगर से हैं, न्यूबॉर्न बेबी का पेशाब अगर कपड़े पर लग जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये भी सवाल किया गया है श्रीनगर से।
जी
यानी जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी नौ मौलूद बच्चा है, तो उसका पेशाब अगर कपड़े पर लग जाता है तो उन कपड़ों में हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं?
नहीं, देखिए पेशाब जो है नजीस है
जी,
चाहे वो दूध पीते बच्चे का पेशाब हो
जी,
चाहे वो नाबालिग बच्चे का पेशाब हो या किसी मर्द का पेशाब हो, औरत का पेशाब हो,
सही
पेशाब अगर सुई की नोक या उससे कम के बराबर भी बदन के ऊपर मौजूद है या कपड़े के ऊपर मौजूद है
जी,
और आपको इल्म है कि पेशाब से हमारा कपड़ा जो है मुत्तसिल हो गया है
जी,
तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप नमाज पढ़ें और आपकी नमाज बातिल होगी। अलबत्ता वो बच्चे अभी जो दूध नहीं, वो बच्चे जो अभी खाना नहीं खाते,
सिर्फ दूध नहीं खा रहे हैं
जी, 2 साल के अंदर है, इनके लिए हुक्म शरीयत यह है, इनका पेशाब भी नजीस है लेकिन उसको धुलने के लिए निचोड़ना शर्त नहीं है। पेशाब की नजासत को कपड़े से जायल करने के लिए 2 मरतबा धुलना वाजिब है, जिसमें से 1 मरतबा निचोड़ना जरूरी है। लेकिन वो बच्चा जो अभी दूध नहीं पीता या नव मौलूद है, उसका पेशाब अगर कपड़े पे है, 1 मरतबा पानी डाल दिए बगैर निचोड़े हुए वो कपड़ा पाक हो जाएगा।
जी बिल्कुल हुजूर, अभी जो सवाल आ रहे हैं उनमें से हम एक सवाल और लेते हैं, और नाजरीन जो आज आप सवाल कर रहे हैं उनको हम औलवियत में रखते हैं, उनको हम सबसे पहले पूछते हैं, इसलिए अगर कोई भी सवाल जहन में है तो आप हमसे पूछिए। एक सवाल किया गया अभी कि सवाल मेरा यानी सलाम, मेरा सवाल ये है कि मर्द और औरत को नमाज यानी नमाज पढ़ने में कौन बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे हैं, किसको बुलंद आवाज से नमाज पढ़नी चाहिए और किसको आहिस्ता नमाज पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर रोशनी डालिए।
देखिए नमाज जो है 2 किस्म की है
जी,
एक जहरी नमाज है, एक इख्फाती नमाज है।
सही,
एक वो नमाज है जिसको जोर से पढ़ा जाता है
जी,
मतलब सुबह की नमाज जो है इसमें करात का जोर से पढ़ना यानी इतने जोर से पढ़ना कि बगल वाला सुन ले,
सही
ये वाजिब है
जी,
वो मर्द के लिए वाजिब है
जी,
लेकिन औरत के लिए अख्तियार है
जी,
औरत जो है जोर से भी पढ़ सकती है अगर नामहरम नहीं सुन रहा है,
सही
और आहिस्ता भी पढ़ सकती है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने कहा है औरत के लिए आहिस्ता पढ़ना बेहतर है। ज़ोहर और असर की नमाज
जी,
इसको इख्फाती नमाज कहते हैं,
सही
इसकी सूरह जो है वाजिब है इंसान के लिए, चाहे सूरह अलहम्द हो या सूरह अलहम्द के बाद दूसरा सूरह हो
जी,
इसको आहिस्ता पढ़ना वाजिब है,
सही
लेकिन जब रुकू सुजूद का जिक्र कर रहा है तो इसे अख्तियार है, चाहे उसको जोर से पढ़े चाहे आहिस्ता पढ़े। इसी तरीके से मगरिब की 3 रकतें, इसमें 2 रकात जो है
पहली दो रकात
ये जहरी है, जोर से पढ़ी जाए, मर्द पे वाजिब है जोर से पढ़े
जी,
औरत को अख्तियार है,
सही
चाहे वो जोर से पढ़े चाहे आहिस्ता, लेकिन जो 3री रकात है
जी,
हालत कयाम में चाहे सूरह अलहम्द पढ़े या तस्बीहात अरबा को पढ़े, दोनों के लिए वाजिब है कि आहिस्ता पढ़े। इसी तरीके से ऐशा की 2 रकातें जहरी है, जोर से पढ़ी जाएंगी, मर्द पे वाजिब है जोर से पढ़े,
सही
औरत के लिए अख्तियार है,
सही
चाहे जोर से पढ़े चाहे आहिस्ता से पढ़े
जी,
लेकिन जो बाद की 2 रकातें हैं इसमें चाहे मर्द हो चाहे औरत हो दोनों पे वाजिब है कि नमाज को आहिस्ता पढ़े।
यानी शरीयत ने मर्द और औरत होने के एतबार से तकसीम नहीं किया, बल्कि नमाज को जो जहरी नमाजें हैं वो बुलंद आवाज से पढ़नी है और जो इख्फाती है वो धीरे से पढ़नी,
धीरे से पढ़नी, अलबत्ता औरत को अख्तियार है,
चाहे तो वो जोर से पढ़े चाहे तो वो,
लेकिन अगर नामहरम उसकी आवाज को सुन रहा है
जी,
तो इस सूरत में फुकाए कराम फरमाते हैं उसके लिए बेहतर यह है
जी
कि नमाज आहिस्ता पढ़े
जी। हुजूर ये 2 सवाल हमने लिए जो अभी आए थे हमारे पास, और हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि जहां पर चांद डूबता ही नहीं है या निकलता ही नहीं है तो वहां पर क्या होगा, इससे मरबूत एक सवाल और आया है। वो पूछते हैं कि अगर किसी मुल्क में दिन बहुत बड़ा होता है, मसलन 22 घंटे का होता है, और रात बहुत छोटी होती है, मसलन 2 घंटे की, जब 22 घंटे का दिन है तो 2 घंटे की रात है, तो ऐसी जगह पर रोजा किस तरीके से रखा जाएगा?
देखिए मैंने पहले वाले सवाल के जवाब में कहा था कि मेयार जो है रात और दिन का होना है,
सही
रात जो है चाहे छोटी हो, दिन बड़ा हो, या इसके बरअक्स हो।
जी
मसलन अगर जो है रात
22 घंटे की,
22 घंटे की है, दिन 2 घंटे का है,
तो 2 घंटे में रोजा रखना है।
तो 2 घंटे का रोजा होगा। इसके बरअक्स हो जाए,
अल्लाह,
22 घंटे का दिन हो,
जी
2 घंटे की रात हो,
जी
तो आपके लिए वाजिब ये है कि आप 22 घंटे के दिनों में रोजा
जी
रहें।
अच्छा,
लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया, हवा गर्म है और इंसान जानता है कि 22 घंटे का रोजा मैं नहीं रख सकता,
सही
वो इसके लिए जो है, चूंकि 22 से उसरो हरज है,
जी
लिहाजा ये इन रोजों की कजा
जी
उन जगहों पे अंजाम दे
जी
जहां जो है दिन और रात मुतआदिल है, मसावी है, या
सही
थोड़ा बहुत फर्क है।
जी
लेकिन जो है अगर सफर कर सकता है वो
जी
ठीक है, अगर सफर नहीं कर सकता
सही
वो माह रमजान है, अगर सफर करे तो वाजिब है,
जी
अगर अख्तियार में है, पैसा है उसके पास,
जी
तो वो जाए सफर करे और माह रमजान के रोजों को ऐसी जगह रोजा रखे माह रमजान का
सही
जहां वो रोजा रख सकता है।
जी
लेकिन मान लीजिए एक माह रमजान से दूसरा माह रमजान आ गया, इसमें सफर करने की तवानाई नहीं थी, पैसा नहीं था
जी
या हालात नहीं बने,
सही
तो चूंकि रोजा इसके लिए 22 से उसर हरज था
सही,
और पूरे साल तक 22 से उसरो हरज
यानी इसके लिए
रहा,
बहुत ज्यादा मुश्किल था ये उसको।
हाँ ये इसका उज्र जो है दूर नहीं हुआ, दूसरा माह रमजान भी आ गया,
जी
तो इसके ऊपर रोजे की कजा भी साकित है,
सही
ये हर रोज के बदले में फिदिया देगा,
जी
यानी 3 पाव गेहूं या जौ देगा।
सही बिल्कुल हुजूर, सवालात तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आ जाए हैं वो भी, और जो हमारे पास गुज़िश्ता हफ्ते के सवालात हैं वो भी, लेकिन वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा, यहीं पर हम आपसे खुदा हाफिज़ी करेंगे। बहुत शुक्रिया के साथ, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
नाज़रीन, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरीके से अपने इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और सवालात इस प्रोग्राम के लिए इस तरह से भेजते हैं। खुदावंद आलम आपको इसका अजर देगा, चूंकि आपका सवाल सबब बनता है कि ये हुक्म इस्लामी पूरी दुनिया तक पहुँचता है। नाज़रीन, अब आपको खुदा की पनाह में देते हैं, आपसे दुआओं की इल्तिमास है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।